चैप्टर 9 क कथात्मक गद्य काव्य। गद्य में रचित रसात्मक कथा काव्य को कथात्मक गद्य काव्य कहते हैं। उदाहरण, साहित्य क्षेत्र के भीतर आने वाली रचनाओं के तीन रूप तो हमारे यहाँ पहले से मिलते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और कथात्मक गद्य काव्य। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 159। उदाहरण, कथात्मक गद्य काव्य का स्थान अब उपन्यासों और छोटी कहानियों ने ले लिया है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 159। कथोद्घार, जहाँ सूत्रधार के वचन या उसके भाव को लेकर कोई पात्र कुछ कहता हुआ रंगमंच पर आ जाता है और नाटक प्रारंभ कर देता है, वहाँ कथोद्घात होता है। उदाहरण, प्रस्तावना के साथ उद्घातक, कथोद्घात आदि का विन्यास चमत्कार भी गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 549। कर्म विभाग, सामाजिक जीवन के सुचारू संचालन के लिए कर्म का विभाजन कर देना। वर्ण व्यवस्था में अलग अलग वर्णों के लिए कर्म विभाजन किया गया है। उदाहरण के लिए, यह पहले कहा जा चुका है कि वर्ण विभाग केवल कर्म विभाग नहीं भाव विभाग भी होता है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 28। कला, मानवीय सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम काम शास्त्र में 64 कलाएं मानी गई हैं। गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य, विशेष कच्छेद्य, ललाट पर तिलक लगाना आदि की गणना इनके अंतर्गत की जाती है। आचार्य शुक्ल काव्य को इन कलाओं में परिगणित नहीं करना चाहते। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि के साथ काव्य को भी ललित कलाओं में स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल काव्य का उद्देश्य मन का परिष्कार मानते हैं। काव्य को कलाओं में स्थान देने से उसका उद्देश्य मनोरंजन मात्र रह जाता है। वे काव्य को क्रीड़ा वृत्ति से पृथक जीवन की गंभीर प्रवृत्तियों से संबद्ध करके देखना चाहते हैं। उदाहरण, कला शब्द के प्रभाव से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा और उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मन बहलाव। यह कला शब्द आजकल हमारे यहाँ भी साहित्य चर्चा में बहुत जरूरी सा हो रहा है। इसे न जाने कब पीछा छूटेगा। हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को 64 कलाओं में गिनना ठीक नहीं समझा था। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 265। कला काव्य, पोएट्री एज एन आर्ट। श्री टंडन ने शक्ति काव्य से पृथक रूपवादी रचनाओं को कला काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल की मानता है कि उसने कला काव्य जैसा वर्गीकरण कला का उद्देश्य मनोरंजन मानकर किया। उदाहरण, डंटन ने जिसे शक्ति काव्य पोएट्री ऑफ एन एनर्जी कहा है, वह हमारे प्रथम प्रकार साधनावस्था के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करने वाला प्रभाव होता है जो पाठकों या श्रोताओं के हृदय में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर डंटन ने शक्ति काव्य से भिन्न को जो कला काव्य कहा है, वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 57। कला निरूपिणी समीक्षा, कला की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर उसके सौंदर्य को प्रभावाभिव्यंजक शैली में व्यक्त करने की समीक्षा। उदाहरण, उन सबका मूल्य केवल वैज्ञानिकी समीक्षा में है, कला निरूपिणी समीक्षा में नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 191। नोट, आचार्य शुक्ल वैज्ञानिक समीक्षा और कला निरूपणी समीक्षा में भेद स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार क्रोचे ने जिसे कला निरूपणी समीक्षा कहा है, वह समीक्षा न होकर किसी कविता का आधार लेकर कला कल्पनात्मक या भावात्मक पदावली में खड़ा किया हुआ एक हवाई महल होगा, धुएं का घरहरा होगा। आचार्य शुक्ल वैज्ञानिक समीक्षा को ही सच्ची कला निरूपणी समीक्षा मानते हैं। कलावाद, कला के लिए का सिद्धांत। कलावाद अंततः काव्य के रूप तत्व फॉर्म को ही साध्य मान लेता है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसका समर्थन नहीं किया। उदाहरण, विभाव पक्ष में शोभन और दीप्ति को चुनकर उनकी असामान्य योजना द्वारा अद्भुत रंजन की सामग्री तैयार करना तथा भाव पक्ष में अनुभूति और व्यंजना को वैचित्र प्रदर्शित करना काव्य में कलावाद के नए और पुराने अनुयायियों का लक्ष्य रहा है। कलावादी कला के लिए के सिद्धांत को महत्व देने वाले डॉक्टर ब्रैडले मिस्टर स्पिंगर ने आदि हैं। कलावादी कोरे चमत्कार प्रदर्शन को ही कला का उद्देश्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने काव्य का अत्यंत गंभीर उद्देश्य माना है, काव्य को साधना कहा है, इसलिए वे कलावादियों का समर्थन नहीं कर सके। उदाहरण, कलावादियों का केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र की हल्की रुचि और दृष्टि की परिमिति के कारण समझना चाहिए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 69। उदाहरण, कलावादी जिसे नूतन सृष्टि कहते हैं, वह स्वच्छ और स्थिर दृष्टि वालों के निकट वास्तविक का विकृति रूप मात्र है। ऐसा विकृत जो प्रायः कौतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाता है, हृदय के मर्म स्थल को स्पर्श नहीं करता, कोई सच्ची और गंभीर अनुभूति नहीं जगाता। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 44। कल्पना मानसिक रूप विधान ही संभावना या कल्पना है। जब हम जगत के बाह्य रूपों की भावना मन के भीतर करते हैं, तब ये कल्पना बिंबों के रूप में मूर्त होकर हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल उपासना, ध्यान, भावना और कल्पना को समानार्थक मानते हैं। वे कल्पना को काव्य का साधन मानते हैं। भारतीय काव्य चिंतन में अलंकार और रस सिद्धांत दोनों में कल्पना व्यापार स्वीकृत है। अलंकार सिद्धांत में समस्त उपमान विधान कल्पना का ही व्यापार है। इसी प्रकार रस सिद्धांत में समस्त विभाव विधान कल्पना का व्यापार है। आचार्य शुक्ल कल्पना को काव्य का बोध पक्ष मानते हैं और कल्पना के लोक को अनित्य स्वीकार करते हैं। वे कल्पना के लिए प्रायः भावना शब्द का प्रयोग करते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक लंबे निबंध में उन्होंने कल्पना या प्रतिभा का प्रयोग किया है। क्रोचे ने कल्पना को प्रतिभाज्ञान से अभिन्न माना है। संभव है उसके विचारों को प्रस्तुत करते हुए आचार्य शुक्ल ने कल्पना को प्रतिभा के समकक्ष स्वीकार करना उचित समझा है। उदाहरण, जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आज के लोग इसको कल्पना कहते हैं। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 161। उदाहरण द्वितीय, अतः कवि की प्रतिभा या कल्पना का प्रयोग प्रस्तुत के मार्मिक प्रत्यक्षीकरण में नहीं है, उससे अलग विचित्र या रमणीय रूप विधान में है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 210। उदाहरण तृतीय, साहित्य वाले इसी को उपासना को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 25। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्र नहीं करता, वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन, पर साधन ही साध्य नहीं है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 26। कल्पनावाद, कल्पना संबंधी वह सिद्धांत जो कल्पना के तत्व को नित्य मानकर उसके लोक को शाश्वत और अनंत कहता है और व्यक्त प्रकृति की संपूर्ण सत्ता को कल्पना लोक की नित्य सत्ता के प्रतिबिंब रूप में देखता है। उदाहरण पर कल्पनावाद के सहारे अव्यक्त और अज्ञात की सबसे अधिक झांकियां विलायती रहस्यवाद में ही खोली गयी। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 79। कल्पित, प्रत्यक्ष के आधार पर रचित नवीन वस्तु के रूप में प्राप्त। उदाहरण, कल्पित अर्थ का प्रधान क्षेत्र काव्य है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 159। कल्पित रूप विधान, प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थ के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर मन में मूर्त होने वाला नया वस्तु व्यापार विधान कल्पित रूप विधान है। उदाहरण, मन के भीतर यह रूप विधान दो तरह का होता है, या तो यह कभी प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का ज्यों का त्यों प्रतिबिंब होता है, अथवा प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप, रंग, गति आदि के आधार पर खड़ा किया गया हुआ नया वस्तु व्यापार विधान। प्रथम प्रकार की आभ्यंतर रूप प्रतीति स्मृति कहलाती है और द्वितीय प्रकार की रूप योजना या मूर्ति विधान को कल्पना कहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों प्रकार के भीतरी रूप विधानों के मूल है प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए बाहरी रूप विधान। अतः रूप विधान तीन प्रकार के हुए, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृत रूप विधान, संभावित या कल्पित रूप विधान। इन तीनों प्रकार के रूप विधानों में भावों को इस रूप में जागृत करने की शक्ति होती है कि वे रस कोटि में आ सकें। यही हमारा पक्ष है। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 260। कल्ब, यह नफ्स और रूह के बीच की स्थिति है। इसमें सदवृत्तियों और दुर्वृत्तियों का द्वंद होता रहता है। वस्तुतः इसे हृदय का पर्याय कहते हैं। इसमें इंद्रिय जनित वासना और ईश्वरोन्मुख चेतना दोनों की स्थिति विद्यमान रहती है। उदाहरण, कल्ब भी एक भूतातीय पदार्थ कहा जाता है, प्रकृति का विकार या भौतिक पदार्थ नहीं। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 138। कवाला, यहूदियों में स्वीकृत परब्रह्म के नीचे की एक ज्योति स्वरूप सत्ता। उदाहरण, परब्रह्म के नीचे एक और ज्योति स्वरूप की भावना पश्चिम के पुरानी जातियों में थी, जैसे प्राचीन स्त्रियों में लोगस की, यहूदियों में कवाला और पारसियों में वहमन की। जैसे ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 144। कवि कर्म, काव्य विधान के माध्यम से अपनी अनुभूति को सहृदय पाठक तक संप्रेषित करना ही कवि कर्म है। उदाहरण, जिस मर्म स्पर्शी वस्तु व्यापार योजना का ज्ञानेंद्रियों द्वारा या कल्पना के सहारे हमने साक्षात्कार किया हो, उसे अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए औरों तक ठीक ठीक पहुंचाकर यदि हम अलग हो जाएं, तो वही कवि कर्म कर चुके हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 101 से 102। कवि कर्म सिद्ध, कवि कर्म का सिद्ध या सार्थक होना, अपनी अनुभूति को पाठक या श्रोता के हृदय में प्रेषित करके उसे भी उसी अनुभूति में मग्न कर देना कवि कर्म की सार्थकता या सिद्धि है। उदाहरण, यदि कवि द्वारा लाए हुए अप्रस्तुत वस्तु व्यापार ऐसे हैं, प्रस्तुत वस्तु जिस भाव का आलंबन है उसी भाव का आलंबन होने योग्य, तो कवि कर्म सिद्धांत समझना चाहिए। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 104। कविता, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा की उपलब्धि के लिए की गई शब्द साधना ही कविता है। उदाहरण, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ मुक्त करती है। उसमें चित्त को रमाने की अद्भुत शक्ति होती है। वह प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य और कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण करके पाठक और श्रोता के बीच चित्त को प्रभावित करती है। कविता विलास की सामग्री नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर और व्यापक है। वह पाठकों के अंतःकरण का परिष्कार करके उन्हें मनुष्यत्व की उच्च भूमि में ले जाती है। उदाहरण, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 6। कवित्त, मुक्तक दंडकों का ही प्रचलित नाम कवित्त है। कवित्त को घनाक्षरी भी कहते हैं। घनाक्षरी में 31, 32 और 33 वर्णों का तक का विधान पाया जाता है। उदाहरण, ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की कवित्तों और सवैयों में खड़ी बोली का बहुत ही ऊंचा मजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास पृष्ठ संख्या 640। कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, प्रौढ़ोक्ति बराबर दर्पपूर्ण उक्ति जिसका आधार वास्तविक न हो। कवि परंपरा में ऐसी साहसपूर्ण उक्तियों का प्रचलन है जो वास्तविक नहीं होती। जैसे बिहारी का यह कहना कि विरहणी नायिका के विरह जनित ताप से जाड़े की रात में भी पड़ोसी बेचैन हो जाते हैं, ऐसी साहसपूर्ण उक्ति है जो वास्तविक नहीं है। किंतु ऐसी उक्तियां कवियों द्वारा बराबर की गई है, अर्थात ऐसी उक्तियां और उनमें व्यक्त व्यापार वास्तविक तो नहीं है किंतु कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है। उदाहरण, आधिक्य या न्यूनता सूचित करने के लिए उहात्मक या वस्तु व्यंजनात्मक शैली का विधान कवियों में तीन प्रकार का देखा जाता है। प्रथम, उहा की आधारभूत वस्तु असत्य अर्थात कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 38। उदाहरण, युवतियों की ओर लक्ष्य रखने वाले मुखों से युक्त नव पल्लव रूप पत्र पंख वाले नए नए आम के मोरों के बाण वसंत में कामदेव तैयार करता है। यहाँ धनुर्धर काम के बाण कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध मात्र हैं, जिससे कामोद्दीपन काल वस्तु व्यंग है। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 391। उदाहरण, इस प्रकार अनुभूति को जवाब मिल जाने पर जब कल्पना ही का सहारा रह गया, तब स्वतः संभवी वस्तु की अपेक्षा कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु की ओर कवियों का ध्यान अधिक रहने लगा। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 104। कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूप कातिशयोक्ति ऐसे साहसपूर्ण उक्तियां जो वास्तविक जीवन में घटित नहीं होती किंतु कवियों द्वारा सिद्ध मानकर बराबर प्रयुक्त होती हैं, उन्हें कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध कहते हैं। रूपकातिशयोक्ति अलंकार में उपमेय का कथन नहीं वरन कवि परंपरा में सिद्ध उपमानों के कथन द्वारा ही उपमेय का बोध कराया जाता है, इसलिए आचार्य शुक्ल ने कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूपकातिशयोक्ति कहा है। उदाहरण, इस स्वभाव सिद्ध अद्भुत व्यापार के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुंड, शंख पर चंद्रमा आदि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूपकातिशयोक्ति के कागजी दृश्य क्या चीज है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 66। कवि समय सिद्ध। कवि समाज में परंपरा से प्रतिष्ठित बातें हैं, जैसे चंद्रमा के कलंक को खरगोश या हिरन मानना, चकोरों का चंद्रिका पान करना, यश के रंग को श्वेत मानना। यदि उदाहरण, जायसी के वर्णन अधिकतर परंपरानुगत ही है, इससे उनमें कवि समय सिद्ध उपमान ही अधिक मिलते हैं, जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 107। कवि समय सिद्ध उपमान। कवियों द्वारा परंपरा से माने स्वीकृत एवं प्रयुक्त उपमान। उदाहरण, जैसी के वर्णन अधिकतर परंपरानुगत ही है, इससे उनमें कवि समय सिद्ध उपमान ही अधिक मिलते हैं, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 107। कहानी, जीवन के किसी एक मार्मिक तथ्य या भावना का मूर्त करने वाली कथात्मक गद्य रचना जो अपनी कलात्मक संगठना के कारण व्यापक संभावनाओं को व्यंजित करके करने की क्षमता रखती है, कहानी कही जाती है। उदाहरण के लिए, जो कहानियां कोई मार्मिक परिस्थिति लक्ष्य में रखकर चलेंगी, उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप रंगों के सहित और परिस्थितियों का विशद चित्रण भी बराबर मिलेगा। घटनाएं और कथोपकथन बहुत अल्प रहेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 543।